भारत को मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए कहने के लगभग एक महीने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने हाइड्रोग्राफिक सर्वे पर भारत के साथ पिछली सरकार के समझौते को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। ये समझौता 8 जून 2019 को साइन किया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के निमंत्रण पर मालदीव का दौरा किया था। समझौते के मुताबिक भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल अध्ययन और चार्ट रीफ, लैगून, समुद्र तट, महासागर धाराएं और ज्वार के स्तर का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। ये पहला द्विपक्षीय समझौता है जिसे नव निर्वाचित मालदीव सरकार ने नवंबर में कार्यभार संभालने के बाद आधिकारिक तौर पर समाप्त किया। नई सरकार बनने के बाद ये पहला द्विपक्षीय समझौता है जिसे आधिकारिक तौर पर समाप्त किया जा रहा है। गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय में सार्वजनिक नीति के अवर सचिव मोहम्मद फिरूजुल अब्दुल खलील ने कहा कि मुइज्जू सरकार ने 7 जून 2024 को समाप्त होने वाले हाइड्रोग्राफी समझौते को रिन्यूअल नहीं करने का फैसला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बृहस्पतिवार को पहली बार जर्मनी में अमेरिकी सैन्य कार्यालय का दौरा किया। अमेरिकी सैन्य कार्यालय में मित्र देशों के नेता युद्ध के लिए हथियारों की आपूर्ति और अन्य प्रकार की सहायता को लेकर समन्वय करते हैं। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अतिरिक्त अमेरिकी सहायता मिलने की उम्मीद जताई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारियों से कई घंटे तक चली मुलाकात के बाद कहा, हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस यूक्रेन के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण समर्थन को जारी रखने के लिए जल्द ही महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बृहस्पतिवार को कहा कि यूक्रेन को लेकर उनके देश के लक्ष्यों में कोई बदलाव नहीं आया है और उनके हासिल होने तक शांति कायम नहीं होगी। पुतिन ने वर्ष के अंत में होने वाले संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में ये बात कही। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को लेकर रूस के लक्ष्यों में नाजीवाद का खात्मा, असैन्यीकरण और देश की तटस्थ स्थिति स्थापित करना शामिल है और इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने फरवरी 2022 में जब सैनिकों को यूक्रेन भेजा था तब भी उन्होंने इन लक्ष्यों को रेखांकित किया था। रूस का आरोप है कि यूक्रेन सरकार पर कट्टर राष्ट्रवादी और नव नाजीवादी समूहों का प्रभाव है। हालांकि यूक्रेन और पश्चिमी देश रूस के इस दावे को खारिज करते रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन को तटस्थ रहना चाहिए और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, जब हम ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे तब शांति कायम हो जाएगी, जीत हमारी होगी। कनाडा के अधिकारी उस सिख ट्रक चालक की तलाश कर रहे हैं जो मादक पदार्थ तस्करी मामले में दोषी पाए जाने से पहले भारत भाग गया था। खबरों के अनुसार 60 वर्षीय सिख ट्रक चालक अमेरिका से कनाडा में 80 किलोग्राम कोकीन की तस्करी करने के मामले में दोषी पाए जाने से पहले भारत भाग गया था। सीबीसी की खबर में कहा गया कि राजकुमार महमी को कोकीन की तस्करी के आरोप में 2017 में गिरफ्तारी के बाद नवंबर में ब्रिटिश कोलंबिया की एक प्रांतीय अदालत ने 15 साल जेल की सजा सुनाई थी। वैंकूवर सन की खबर के अनुसार सजा सुनाए जाने से एक महीने पहले महमी वैंकूवर से भारत भाग गया। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन संबंधी नीतियों ने अमेरिका को वैश्विक अर्थव्यवस्था में ज्यादा सुरक्षित और अलग थलग कर दिया है। अमेरिका चीन बिजनेस काउंसिल के एक कार्यक्रम में येलेन ने बृहस्पतिवार रात कहा कि ट्रंप प्रशासन बुनियादी ढांचे और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू निवेश करने में विफल रहा, साथ ही हमारे साझेदारों और सहयोगियों के साथ संबंध की भी उपेक्षा की गई जो दशकों में बने और मजबूत हुए थे। येलेन की ये टिप्पणी उस वक्त आई जब अमेरिका एशियाई महाशक्ति के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। पिछले महीने नवंबर में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक भी हुई थी। उन्होंने कहा कि चीन पर बाइडन प्रशासन का रुख हमारे आर्थिक संबंधों को ठीक ढंग से संभालने के लिए उद्देश्यपूर्ण तरीके से और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना है। पोप फ्रांसिस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और इस्तेमाल नैतिक रूप से किए जाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का आह्वान करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि अनुकंपा, दया, नैतिकता और क्षमा के मानवीय मूल्यों से रहित प्रौद्योगिकी के खतरे बहुत बड़े हैं। फ्रांसिस ने विश्व शांति दिवस के लिए अपने वार्षिक संबोधन में AI के वैश्विक नियमन पर जोर दिया। कैथोलिक चर्च हर साल 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस मनाता है। वेटिकन ने बृहस्पतिवार को यह संदेश जारी किया। पोप ने यह अपील तब की है जब इस साल की शुरुआत में AI द्वारा तैयार उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई थी जिसमें वो सफ़ेद रंग की एक महंगी जैकेट पहने हुए दिखे थे। जो ये दिखाता है कि कैसे एक फर्जी तस्वीर तेजी से ऑनलाइन प्रसारित हो सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के प्रौद्योगिकीय विकास और इस्तेमाल में मूलभूत मानवाधिकारों की गारंटी देने, शांति को बढ़ावा देने तथा गलत सूचना भेदभाव के खिलाफ रक्षा को लेकर प्रमुख चिंताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।